एलेन का सफ़र जो केवल 4 टीचर्स से और 8 बच्चों से स्टार्ट हुआ और आज एलेन में लगभग 2,80,000 बच्चे और 15,000।
हेलो एंड वेलकम टू द जोश टॉक्स पॉडकास्ट वेयर वी स्पीक टू इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया। आई एम योर होस्ट सिद्धांत नाग एंड टुडे वी आर स्पीकिंग टू ब्रजेश महेश्वरी, द को-फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एलेन करियर इंस्टीट्यूट। हेलो ब्रजेश, वेलकम टू द जोश टॉक्स पॉडकास्ट। आप टेस्ट प्रेप के सबसे पसंदीदा टीचर्स में से एक हैं। हमें बताइए, आपको टीचर बनने का ख्याल कब और कैसे आया?
मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में था, हमारे पिताजी को कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा था। डॉक्टर ने सेवा करने के लिए कह दिया था। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, फिजिक्स का पेपर ज़बरदस्त फोड़ा था, कुछ नहीं छोड़ा था, नंबर को पूरा जोड़ा था और मन में इतना एक्साइटमेंट था कि उनको बताने के लिए मैं दौड़ा था। जैसे तैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़ के जा चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी। मेरी बात मेरे दिल में ही रह गई। मैंने वहीं उनके सामने अंदर से कमिटमेंट कर लिया कि जीवन में कुछ भी करूँगा तो फिजिक्स में करूँगा और पढ़ाने उतरूंगा तो सब्जेक्ट फिजिक्स से पढ़ाऊंगा।
एवरी पेरेंट ड्रीम्स ऑफ देयर चाइल्ड गेटिंग इनटू देयर चॉइस ऑफ कॉलेज एंड एलेन हेल्प्स स्टूडेंट्स अचीव दोज गोल्स। टेल अस, एलेन इंस्टीट्यूट का सफर शुरू कैसे हुआ और आपने पेरेंट्स और बच्चों का भरोसा कैसे जीता?
मैं आराम से रात को 10 बजे सोता, सुबह 3 बजे उठता, 4:45 नहा धो के पढ़ने बैठ जाता और 7:15 तक पढ़ाई खत्म। मेरे पास टाइम ही टाइम, तो मैं फिर जो हमारे एग्ज़ाम के पेपर के हिसाब से सब्जेक्ट के गेस पेपर तैयार करता था और मेरे साथी उसका इंतज़ार करते थे और वो ऑलमोस्ट लगभग 75-80% बैठता था। आराम से कॉलेज को टॉप किया, इंस्टीट्यूट को टॉप किया, वहाँ पे अपने साथियों को पढ़ाने का शौक डेवलप हो गया। और तब तक मैं आपको बता दूँ, मेरे दूसरे नंबर के भाई राजेश माहेश्वरी ने मैथ्स पढ़ाना चालू कर दिया और हमारा इंस्टीट्यूट हमारे फादर के नाम पर उसकी स्थापना हो गई 18 अप्रैल 1988 को। शौक के हिसाब से इंस्टीट्यूट पे आ गया, लेकिन देखा वहाँ तो हर सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी के सब टीचर पढ़ा रहे थे, तो मुड्डा बाहर था, उस पर बैठ गया। सोचा कि जो बच्चे आएंगे उनको जो भी सपोर्ट चाहिएगा वो देंगे। बच्चों ने मुझसे आते जाते बात करना चालू किया। मेरा फिजिक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, उस पर जकड़ पकड़ थी, बच्चों ने मुझसे उसके डाउट पूछना चालू कर दिए। धीरे धीरे बच्चे मुझको जुड़ते चले गए, पहचान बढ़ती गई, सब बच्चे मुझे पहचाने लगे। अचानक हमारे में फिजिक्स की फैकल्टी ने छोड़ दिया। अब तो मेरे पे ज़बरदस्त एक जिम्मेदारी आ गई। यहाँ मुझे अपने पिताजी से किया कमिटमेंट के लग रहा शुरुआत हो रही है। मैंने 4 कमिटमेंट से अपने एक मिशन की शुरुआत करी और वो कमिटमेंट नंबर 1, कोटा के टैलेंट को कोटा में रोकना है। दूसरा कमिटमेंट, बाहर से टैलेंट को कोटा में लाना है। तीसरा कमिटमेंट, कोटा को एजुकेशन में एक विशेष पहचान देनी है। और चौथा कमिटमेंट, कोई भी अभावग्रस्त गरीब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने से वंचित ना रह जाएं, इसका पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। एक तो एलेन पर मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसी समय कोटा में एक बंसल क्लासेस के डायरेक्टर वी के बंसल, वैसे बोलना चाहिए जो मैथ्स पढ़ाते थे और उन्हें उनसे पहले पढ़ भी चुका था, उनका विद्यार्थी रह भी चुका था, वो हमारे पास इंस्टीट्यूट पर आए। बोले, यार इंस्टीट्यूट कैसे डालते हैं? मैंने, बहुत आसान है, एक छत के नीचे 3 सब्जेक्ट के टीचर साथ साथ पढ़ाएं। बोले, मैथ्स तो हम पढ़ा लेंगे, केमिस्ट्री हमारे बहुत साथी लोग भी हैं, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा, आप अगर आदेश करें और विश्वास करें तो मैं पढ़ा लूँगा। बोले, यार तुम कैसे पढ़ाओगे? तुम्हारी तो मैथ्स काफ़ी अच्छी थी। बोले, मैं भी खुद ही पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स एलेन पर। बोले, अच्छी बात है। उन्होंने कोटा के अंदर IIT की शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से बात सुनेगा, पूरे कोटा में सभी स्कूल के बच्चों का एक एंट्रेंस टेस्ट लिया, उसमें टॉप 14 बच्चों से एक टॉप बैच बनाया और उसमें कोटा में IIT की शुरुआत हुई 1990 में, जहां मेरी जिम्मेदारी ही है फिजिक्स पढ़ाने की। ज़रा सोचिए, मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जो IIT के फॉर्म को भरने में कतराता था, घबराता था, आज मैंने जिम्मा लिया IIT पढ़ाने का बंसल क्लासेस पर। यहाँ मैं सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जब कुछ ठान लो सब कुछ संभव है, बस अंदर जिद होनी चाहिए। हमारा सिलसिला चालू हुआ, एलेन पे पढ़ा रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए फिजिक्स और बंस क्लासेस पे जा रहा हूँ आईआईटी बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मेरी एक थोड़ी सी मैथ्स की अलग तरीके जिद थी, ज़्यादा उसके लिए कह दीजिए इंटरेस्ट था, तो मैं वहाँ जाता था लेकिन पहले उनके मैथ्स के डाउट सॉल्व करता था फिर फिजिक्स पढ़ाता था। शायद उनके बात पता चल गई और उनको खल गई, और एक बार उन्होंने बच्चों के सामने मुझे लपक के दबा के डांट दिया। मुझे अजीब सा लगा, मैं घर गया, मम्मी जी को बताया। मम्मी ने ये कहा कि बेटा अपन मानधना है, अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आत्मसम्मान है। मैंने मेरे लिए भी सम्मान इम्पॉर्टेंट है और मेरे धन का कोई मायना नहीं, ना आज पहले था ना आज है, लेकिन मेरे लिए वो विद्यार्थी इम्पॉर्टेंट है जो मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं हमेशा उनके चेहरे पर गुलाबी मुस्कान देखना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि वापस बच्चों को जो उन्होंने पैसा दिया उनको लौटा दूँ। मैंने उनके लिफाफे लिए और अगले दिन गया और जाके लिफाफे दे दिए, क्लास को जाके स्टार्ट किया, अपने टॉपिक को ख़त्म किया और लास्ट में बोल दिया कि आज मेरी लास्ट क्लास थी। सुनते बच्चों ने हंगामा कर दिया, हम तो केवल आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, केवल आपसे ही पढ़ेंगे। मैंने कहा यहाँ तो नहीं पढ़ा सकता, बोला आप जहाँ पढ़ाएंगे वहीं आ जाएंगे। और अगले दिन बच्चे घर पर पहुँच गए और वहाँ बोले मुड्ढे बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन हमें आपसे पढ़ना है। और वहाँ पर सिलसिला चालू हुआ, मुड्डों पे बच्चों ने पढ़कर हमारा आईटी का सफ़र चालू हुआ। और कहते हॉनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड, खुद अपने ईमानदारी से क्वेश्चन बनाता था बच्चों के लिए, क्वेश्चन के दिल मांगे मोड़ से प्रैक्टिस कराता रहा, सफ़र आगे बढ़ता रहा। और जब आईटी का एग्ज़ाम हुआ तो मेरे कराए हुए 4 क्वेश्चन डिक्टो आईटी 1991 में आ गए। बड़ी बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसानी हो तो आईटी में करा हुआ क्वेश्चन बनाया हुआ क्वेश्चन आ जाए। एकदम रिजल्ट जो आया वो इतना प्रत्याशित था, 14 बच्चों में से 7 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। ये कोटा के आईटी के पहले साल का पहले बैच का जो टॉप बैच था उसका रिजल्ट था। ये मेरे सपने से कम नहीं था, मेरे खुशी के आंखों में आंसू चल रहे थे, मुझे लगा कि मेरे सपनों को उड़ान मिल चुकी है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर ईमानदारी से और खामोशी से मेहनत करें तो हमेशा सफलता शोर मचाती है। यहाँ तो ये रिजल्ट केवल एक फिजिक्स का है, एलन का तो है ही नहीं, क्योंकि एलन पे आईटी नहीं पढ़ाई गई। कमिटमेंट तो किया था कि एलन के लिए कुछ खास रिजल्ट आना है, एलन को एक कोटा के हिसाब से पहचान बनानी है, कोटा को पहचान देनी है। मैंने कहा अब रिजल्ट एलन को चाहिए। उसी समय 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई और एकदम हमको जो क्रैश कोर्स लेते थे 45 दिन का वो हो गया, हमको 105 दिन का मिला। और पढ़ाया तो उसमें भी गजब का रिजल्ट आया, एक बच्चे ने टॉप रिजल्ट मेडिकल में दिया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट था, अंदर से एक डिटर्मिनेशन था कि एक लॉन्ग सेशन का रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट आया, क्रैश कोर्स से आया, लेकिन उससे बच्चे बढ़ गए। आईआईटी का रिजल्ट पहले आ गया था तो उससे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का भी मेरे पे विश्वास बढ़ गया, तो एलएन पर एकदम इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बहुत आ गए। मेरा बेसिक मीडियम हिंदी था और मैं वैसे ही बहुत सारे बैचेस को ले रहा था, तो अलग से इंग्लिश मीडियम का बैच बना और उसके लिए अलग से फिजिक्स के टीचर को अपॉइंट किया। उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया लेकिन बच्चों को बिल्कुल डाउट का समय नहीं देते थे, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी मान के उनका डाउट भी बताना चालू कर दिया। ये बात उनको बुरी लगी, उन्होंने एलन को छोड़ दिया और अब मेरी जिम्मेदारी आ गई इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाने की। वहाँ मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, पीछे नहीं हटा और उनको पढ़ाना चालू कर दिया। उनमें से एक बच्चे का आईटी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी भी तलाश है मुझे एलन के एक लॉन्ग सेशन में, फुल सेशन में टॉप रिजल्ट की। मन में आ रही थी बात कि यार एक मेडिकल में टॉप रिजल्ट चाहिए। मुझे लगा यार अभी तक रिजल्ट फिजिक्स के कारण आ रहे हैं, कोई बच्चा मेडिकल में, क्योंकि बच्चे फिजिक्स में घबराते हैं, कोई ऐसा बच्चा मिल जाए कि जो फिजिक्स को बहुत पसंद करता हो। और एक बच्चा मुझे मिल गया, छोटा सा हाइट का बच्चा, क्लास में अकेला, इतना बढ़िया सोचता था, इतना फास्ट कैलकुलेशन करता था। उसने एक बार मुझसे मिलकर बोला कि सर मुझे बहुत अच्छी लगती फिजिक्स, आप जितने और टॉपिक जानते हो सब मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है, मुझे फिजिक्स में आगे बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने ऐसी बात है, उस बैच में अकेला वही मेरे साथ बहुत इंटरेक्शन करता था, मैंने कोई बात नहीं। मैंने उस समय 8 टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाए, उसने उसको पूरा ढंग से किया और आप देखिए ऊपर वाले की विशेष कृपा हुई, वो जो 8 टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस थे जब मेडिकल का एग्जाम हुआ उसी से 28 क्वेश्चन बाकी बच्चों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गए। बाकी बच्चे तो 70 से ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, वो 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, उसने 23 क्वेश्चन की जंप फिजिक्स में ले ली थी, जिससे लगभग 100 स्कोर का डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया था, और उसने उस समय मेडिकल को टॉप कर दिया और फाइनली एनएल की फर्स्ट रैंक मेडिकल स्ट्रीम में आ गई, जिसका एक सपने का इंतजार था। उस दिन तो गजब की बात थी, मुझे लगा कि जो जो मैंने सपने देखे उनको पूरा होता हो पाया। कहते हैं अपने सपनों को हमेशा ऐसे रखो कि दुनिया आप पर हंसे, लेकिन ध्यान रखना जिस पे दुनिया हंस रही है उन सब सपनों को आप ही पूरा कर सकते हैं। अब मेडिकल का रिजल्ट जैसे ही फर्स्ट रैंक आई, एलन ने तो अलग ही उड़ान भरी। अब एलन रुकने नहीं वाला था, बच्चों की इतनी भीड़ हो गई कि मेरा सुबह से शाम कैसे निकल जाता मालूम नहीं पड़ता था।
If you like what you're hearing and you'd like to hear more inspiring talks like this, then don't forget to click the follow button and the bell icon next to it. Now, let's continue. सफलता हासिल करने के लिए एक इंसान को कई चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, तो आपको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
मुझे कम से कम 14 से 16 घंटे पढ़ाना पड़ता था। मुझे आज वो दिन याद है, एक बार पढ़ाते पढ़ाते मुझे गले से आवाज निकलना बंद हो गया, एकदम आवाज रुक गई। उसी मोमेंट पे सारी क्लास के बच्चे रोने लग गए। बहुत ही मार्मिक क्षण था, संवेदनशील मोमेंट था। मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना मेरे से जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं। मेरी गजब की ये पूंजी है, ताकत है, यही मेरी दौलत है। लेकिन बाहर के लोगों ने इसको थोड़ा फायदा उठाया और एक भ्रामक प्रचार किया और बोला ब्रिजेश सर के थ्रॉट कैंसर है, उनको अमेरिका जाना इलाज करने के लिए। इसका असर एलन पे पड़ा। एलन पे रिजल्ट के साथ साथ जो इतना अच्छा भीड़ थी, एकदम आवक बंद हो गई, सन्नाटा छा गया। मुझे एडमिशन डेस्क पर बैठना पड़ा। वापस से स्थिति नॉर्मल हो गई, वापस से बात मालूम पड़ गई कि ये केवल अफवाह थी। और बात सच है, सच सच होता है एक बीज की तरह, कितना भी छुपाओ एक दिन वो सामने आ ही जाता है। एक बार पैसे के लालच में कुछ टीचर्स ने बच्चों को बिल्कुल अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एकदम छोड़ के चले गए, और एकदम लगा कि लास्ट मोमेंट पर है, और बच्चों से उनकी इतनी इंटीमेसी थी कि लगा सारे बच्चों के पीछे चले जाएंगे। उस समय लगभग था कि 6 से 7 हज़ार बच्चे वो खींच के ले जाएंगे। मैं क्लासेस में गया, अलग से बच्चों को असेंबल भी किया, बड़े बड़े हॉल के अंदर खटाखट बच्चों के सेशन लिए, और बच्चों का 2 दिन बस केवल एलन पे विश्वास करना और मुझ पे विश्वास करना, तुम्हारे हल्के से भी आँच नहीं आएगी और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, तुम देखो बस। बच्चों ने विश्वास किया। 5-6 दिन में जो 6-7 हज़ार बच्चे की बात थी, वो केवल 300 बच्चे रह गए। और आप ताज्जुब करोगे, उसी साल एलन की फर्स्ट रैंक आई।
विद इट्स ग्रोइंग सक्सेस, पीपल आर इंक्रीजिंगली क्यूरियस अबाउट द एलन इंस्टीट्यूट। सो ब्रजेश, कैन यू टेल अस Which strategies you use to build Allen's distinct identity and brand value?
Allen में खास बात थी, एक तो बच्चों की parental academic caring। हम अलग से पूरी एक टीम लेके चलते थे, जिन्हें साल भर कोई क्लास नहीं लेनी, केवल बच्चों को डाउट के हिसाब से केयरिंग करना। कोई बच्चे का कुछ भी छूट जाए तो उसको पढ़ाने के लिए, सपोर्टिंग करने के लिए, मेकअप करने के लिए टीम तैयार रखना, और हमेशा डाउट के लिए बच्चा किसी भी समय मॉर्निंग इवनिंग कभी भी टीचर से, जो कि नहीं पढ़ाने वाले क्लास में लेकिन सपोर्ट के लिए साथ में बैठने वाले हैं, वो केयरिंग करते थे। और बाकी एलन के अपने कुछ वो खास कारण कि एलन संस्कारों पे कार्य करता है, नैतिक मूल्यों पे कार्य करता है। एलन के अंदर जैसे ही बच्चा क्लास में आता था, आते सबसे पहले प्रार्थना होती थी ताकि उसका चंचल मन निर्मल हो जाए, वो होश में आ जाए, पूरा फोकस हो जाए। और जब निकलता था क्लास से फ्री होकर, तो एक ओथ होती थी, प्रतिज्ञा, ताकि पूरा जोश में आ जाए कि करना है तो करना है, लड़ना पड़े तो लड़ना है, गिर गए तो संभलना है, फिर उठ के आगे बढ़ना है, गरजना है, धड़कना है, बरसना है, लेकिन करना है तो करना है, हर हालत में मंजिल को पाके दम लेना है। इस तरह का एनवायरनमेंट होता था जहाँ दोनों का खेल जोश होश के तालमेल से पूरा होता था, और बच्चा आराम से एलन के ट्रैक में संस्कारों के सफर पर चलता हुआ अपनी मंजिल से मेल करता था। ये चीज़ एलन को हटकर अलग बनाती थी। बच्चों के लिए ओपन सेशन, क्योंकि आगे सफर चलता है, बच्चा घर से बाहर निकलता है, कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो हमारा एक ओपन सेशन होता था जिसका नाम ही OPEN का मतलब ओपन प्लेटफॉर्म टू एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटीज। तो बच्चा कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन जब वहाँ उसको उस तरह का माहौल मिलता था, मोटिवेशन मिलता था, बूस्टअप मिलता था, एक म्यूजिकल एनवायरनमेंट मिलता था, तो अंदर की सारी नेगेटिविटी जलकर राख हो जाती थी, बोरा पॉजिटिव होके वापस निकलता था, चार्ज होके निकलता था, और उससे उसके आगे पढ़ाई का मोमेंटम अलग तरह का होता था। तो ये बच्चों को संभालने का तरीका था। पढ़ाई तो बच्चों को करनी है, लेकिन एनवायरनमेंट हम देते थे।
एलन इंस्टीट्यूट का सफर सुनकर इतना तो तय है कि आपने अपनी कामयाबी अपने हाथ ही लिखी है। आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
सबसे पहले हर संस्थान में जो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, उनको अपना काम अपने साथियों के साथ ऐसा करना चाहिए कि हर के चेहरे पे स्माइल रहे, हर के सुख दुख में हमेशा उनके लिए आप तैयार रहें, उनको लगे हम परिवार के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें ऑनरशिप की भावना रहे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है अपनापन, हम में बहुत दम है। और दूसरा, हम जो भी काम कभी करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि दूसरे के चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहें और जो काम कर रहे हैं उससे सब लोग हमेशा खुश रहें और हमारे काम की खुशबू ऐसी हो कि हर को लगे हम टीम वर्क के अंदर काम कर रहे हैं और टीम से कोई भी ड्रीम पूरा किया जा सकता है।
थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। Don't forget to click the follow button and the bell icon to keep up with Josh. You could also click the three dots and then the share button to send a dose of inspiration and Josh to your friends and family. We hope that today's episode encourages you to take action and achieve your goals. And we'll see you in the next episode of the Josh Talks podcast with me, Siddhant Nag.